श्रोता मित्रों, बान की मून भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध के बारे में हम बातें कर रहे हैं जाने माने पत्रकार संजय उपाध्याय के साथ, और उनसे हमने जाना कि बान की मून और भारत के संबंधों की शुरुआत कैसे हुई थी, किस तरह से रहा संबंध बान की मून के कार्यकाल के दौरान भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ का। इस अंश में जानते हैं कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कायमी सदस्य बनने के लिए, और क्या खास बात रही, क्या विशेषता रही बान की मून के कार्यकाल की। संजय जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
नमस्कार अरिता जी।
संजय जी, तो इसके जो कारण है कि हम नहीं कर पाए, उसमें बहुत सारे घटक भी होंगे, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कायमी सदस्य बनने के लिए?
मेरे ख्याल से सिर्फ भारत नहीं, विश्व के और भी दो तीन देश जो भी भारत के साथ UN में उनको परमानेंट मेंबर बनाया जाए इसकी रेस में है। इन लोगों ने जिस टाइम पे भारत फाउंडर मेंबर था UN का, तब हमारी कम नसीबी बोले तो हम तब इंडिपेंडेंट नहीं थे, इसलिए हम वहाँ पे परमानेंट मेंबर में जगह नहीं ले पाए। मगर आज की बात करें तो UN में अगर आपको मेंबरशिप चाहिए परमानेंट, तो उसके लिए आपका GDP ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपका ह्यूमन राइट्स जो है उसमें आपका वो लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो भी आपका बेटर होना चाहिए जो आपके कंपेरेटिव और भी मेंबर्स बनना चाहते हैं। साथ में डेवलपमेंट, आप UN को कितना हेल्प करते हैं, ये सब उनका क्राइटेरिया है। उसमें आपका कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है उसके आधार पे अन्य सब राष्ट्र वोटिंग करते हैं, और बाद में आपको लेना या नहीं लेना उसके ऊपर कार्यवाही होते हैं। मेरे ख्याल से जो लास्ट मीटिंग हुआ था उसमें भारत ने एक प्रस्ताव भी शायद रखा था कि UN का पूरा फॉर्मेट ही चेंज करना चाहिए, जबकि अभी सिर्फ ये 5 कंट्री नहीं बल्कि वर्ल्ड के और भी देश काफी डेवलप हो रहे हैं, तो UN का थोड़ा विस्तार कीजिए, और भी देश जो डेवलप हो रहे हैं उनको साथ में रखिए और फिर चलो इकट्ठा मिलकर काम करते हैं। ये एक सुझाव भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने भी दिया था, और उनको इस स्टेटमेंट के बाद काफी वाहवाही मिली थी।
संजय जी, बान की मून की बात पर वापस आते हैं, तो उनकी कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही थी?
बान की मून की बात करिए तो उनके जो 10 साल का उनका कार्यकाल था, उन्होंने वर्ल्ड में हर एक इश्यू को सॉर्ट आउट किया, कितनी कंट्रीज है तो हर जगह पे क्या इश्यू आ रहे हैं, और आने वाले 25 या 50 सालों में पूरे विश्व के देशों के लिए कौन सी समस्या सबसे गंभीर है, सबसे बड़ी है। और उन्होंने जिस मुद्दे पे काफी वर्क किया है, क्योंकि UN सालों से वर्कआउट कर रहा है पॉवर्टी पे कि भाई ये गरीबी हटाओ, लोगों को पूरा खाना दो, वॉर नहीं होनी चाहिए, मगर बान की मून की बात करिए तो उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर विश्व के सारे देशों को जो मैसेज दिया है वो आने वाली बहुत सी पीढ़ियां उनको याद करेगी। आपको बता दूं कि बान की मून के समय में ही क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरा वर्ल्ड के सारे देशों का एक कॉन्फ्रेंस किया 2007 में, जिनमें उन्होंने फिगर के साथ वर्ल्ड के सारे देशों को बताया कि हम डेंजर जोन की बॉर्डर पे हैं, अभी हमको ये जो पॉल्यूशन का इश्यू है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, हम ग्रीन एनर्जी की ओर ज्यादा जाए तो बेहतर है जिससे आने वाली पीढ़ी को कोई मुश्किल ही ना हो, और स्वाभाविक रूप से कोई भी वाटर हो या एयर हो या कोई पोल्यूशन में लोगों को दिक्कत ना आए, लोगों का जो जीवन है वो बेहतर तरीके से वो लोग जी सके। और ये क्लाइमेट चेंज में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने जो पॉलिसी तैयार करने के लिए सब राष्ट्रों को बोला था, उसके बाद 2007 के बाद हम भी देख सकते हैं सोलार एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, हाइड्रो पावर एनर्जी हो, सब देशों ने, विश्व के जो डेवलप हो रहे हैं उन सब देशों ने भारत समेत बहुत सारा काम किया है, और काफी योजनाएं इसके ऊपर बनाई जा रही है, और मेरे ख्याल से आने वाले कुछ सालों में इसकी अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ेगी, गवर्नमेंट और इसके लिए स्कीम्स लाएंगी, तो पूरी दुनिया में एक क्लाइमेट का जो वार्निंग अभी बज रहा है सब लोगों के ऊपर उसको कंट्रोल किया जा सकता है।
जी संजय जी, सही में आपने बहुत अच्छे से बात की, आपने बहुत अच्छे से समझाया बान की मून के कार्यकाल के बारे में। SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया हरिता जी।